नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु में 17,300 करोड़ रुपए से अधिक की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री आज शाम महाराष्ट्र के यवतमाल से पीएम किसान योजना की 16वीं किस्त जारी करेंगे। हिमाचल प्रदेश के लोक निर्माण विभाग मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देने का फैसला किया। गुजरात तट से 3,100 किलोग्राम मादक पदार्थों की सबसे बड़ी खेप जब्त की गई। आज राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जा रहा है और रणजी ट्रॉफी में मुंबई की टीम के तनुष कोटियान और तुषार देशपांडे ने शतक लगाकर इतिहास रचा। दोपहर समाचार के साथ मैं अलका सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तमिलनाडु में 17,300 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने थूथुकुड़ी में वीओ चिदम्बरनार बंदरगाह पर आउटर हार्बर कंटेनर टर्मिनल की आधारशिला रखी। प्रधानमंत्री ने वीओ चिदम्बरनार बंदरगाह को देश के पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब पोर्ट के रूप में स्थापित करने वाली अलवणीकरण संयंत्र, हाइड्रोजन उत्पादन और बंकरिंग सुविधा परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया। श्री मोदी ने हरित नौका पहल के अंतर्गत देश के पहले स्वदेशी हरित हाइड्रोजन ईंधन सेल अंतर्देशीय जलमार्ग पोत की भी शुरुआत की। प्रधानमंत्री ने 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 75 लाइट हाउसों में पर्यटक सुविधाओं का भी लोकार्पण किया और वांची मनियाची नागरकॉयल रेल लाइन और मेल्लाप लायम अरलवाय मोली खंड के दोहरीकरण के उद्देश्य से रेल परियोजनाओं का शुभारंभ किया। तमिलनाडु में कनेक्टिविटी बढ़ाने, सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और क्षेत्र में तीर्थ यात्राओं को सुविधाजनक बनाने के लिए लगभग 4,586 करोड़ रुपए की कुल लागत से विकसित 4 सड़क परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि भारत का पहला हाइड्रोजन ईंधन सेल पोत गंगा नदी के रास्ते काशी की यात्रा करेगा और ये तमिलनाडु के लोगों की ओर से उनके निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी के लिए एक उपहार होगा। श्री मोदी ने कहा कि इस तरह के कदमों से एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम को मजबूती मिलती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने समुद्री क्षेत्र को बढ़ावा दिया है जिससे राज्य में कई गुना वृद्धि सुनिश्चित हुई है।
मैरीटाइम सेक्टर की ग्रोथ कई गुना होने जा रही है और उसका बड़ा लाभ समुद्री तट के राज्यों के और साथ साथ तमिलनाडु को मिलना तय है और इससे मेरे देश के युवा बेटे बेटियों को रोजगार के अनेक नए अवसर मिलने वाले हैं। तमिलनाडु विकास के इस मार्ग पर आने वाले समय में और तेजी से आगे बढ़ेगा।
प्रधानमंत्री ने कहा कि 4,500 करोड़ रुपए की परियोजनाओं से तमिलनाडु और केरल के बीच रेल और सड़क सेवाएं बढ़ेंगी और पर्यटन समेत सभी क्षेत्रों को बढ़ावा मिलेगा। श्री मोदी ने कहा कि विकास से युवाओं का भविष्य सुरक्षित होगा, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और यही प्रधानमंत्री की गारंटी थी।
जब तीसरी बार देश हमें सेवा का मौका देगा तब मैं आपकी सेवा भी और एक नई ताकत के साथ करूंगा। जो प्रोजेक्ट आज शुरू हुए हैं उनको पूरा करने का भी हम उतनी ही ताकत से प्रयास करेंगे और तमिलनाडु के लोगों को ये मोदी की गारंटी है।
केंद्रीय मंत्री डॉ एल मुरुगन ने इस अवसर पर कहा कि पिछले 10 वर्षों में देश में 11 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाएं लागू की गई हैं और भारत को चंद्रयान 3 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचाने का सौभाग्य मिला है। प्रधानमंत्री आज शाम महाराष्ट्र में रेल, सड़क और सिंचाई से संबंधित 4,900 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री एक जनसभा में किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 21,000 करोड़ रुपए से अधिक की 16वीं किस्त जारी करेंगे। श्री मोदी यवतमाल में महिलाओं के 5.5 लाख स्वयं सहायता समूहों के लिए 825 करोड़ रुपए की लागत भी राशि भी वितरित करेंगे। प्रधानमंत्री महाराष्ट्र में 1,300 करोड़ रुपए से अधिक की रेल परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज रांची में झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय के तीसरे दीक्षांत समारोह में शामिल हुई। चेरी मनातू परिसर में आयोजित दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति ने आज तीन असाधारण प्रतिभाशाली छात्रों को चांसलर पद से सम्मानित किया और उन्होंने 67 स्नातक छात्रों में से 58 छात्रों को उनकी उत्कृष्ट शैक्षणिक उपलब्धियों के लिए स्वर्ण पदक से सम्मानित किया। इनमें 32 छात्राएं शामिल थीं। राष्ट्रपति मुर्मू ने दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए छात्रों से 2047 तक देश की एक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए अपने ज्ञान के क्षेत्र का व्यापक विस्तार करने का भी आग्रह किया।
आपके विश्वविद्यालय का आदर्श वाक्य है ज्ञानार्थी बुद्धि कौशलम। इसका अर्थ है ज्ञान से ही बुद्धि और कौशल का विकास होता है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आज विद्यार्थी जीवन से निकलकर चुनौतियों से भरे विश्व में प्रवेश कर रहे सभी विद्यार्थियों इस संस्थान द्वारा प्रदान किए गए ज्ञान का सार्थक उपयोग करें। बेटियों को मैं विशेष रूप से शुभाशीष देती हूँ। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि अनुसंधान के क्षेत्र में ये विश्वविद्यालय सराहनीय कार्य कर रहे हैं।
दीक्षांत समारोह के बाद राष्ट्रपति मुर्मू ओडिशा की अपनी आगे की यात्रा के लिए सीधे बिरसा मुंडा हवाई अड्डे के लिए रवाना हुईं। भारतीय नौसेना, गुजरात पुलिस और मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो के संयुक्त अभियान में 3,100 किलोग्राम से अधिक मादक पदार्थों की एक बड़ी खेप जब्त की गई है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री के नशा मुक्त भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप हमारी एजेंसियों ने आज देश में नशीले पदार्थों का बड़ा जखीरा पकड़ने में सफलता हासिल की है। श्री शाह ने देश को नशा मुक्त बनाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता की सराहना की। उन्होंने इस उपलब्धि के लिए एनसीबी, नौसेना और गुजरात पुलिस को बधाई दी। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राज्यसभा चुनाव में हार के बाद हिमाचल प्रदेश के लोक निर्माण विभाग मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने अपने पद से त्यागपत्र की घोषणा की है। श्री सिंह ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि वर्तमान परिस्थितियों में उनका सरकार में बने रहना सही नहीं है।
हमारी ओर से काम करने का नजरिया पूरा था और उसको हमने डिलीवर करने का हर संभव प्रयास किया है, मगर मुझे दुख के साथ ये बात कहनी पड़ रही है कि जिस तरीके से जो मैसेजेस डिपार्टमेंट के अंदर भेजे जाते हैं, जिस तरीके से एक मैसेज ये दिया जाता है कि हमको अंडरमाइन करने की कोशिश की गई, मगर हमारे अस्तित्व को कोई दबाने का या कोई मिटाने की कोशिश करेगा, उस चीज को मैं टॉलरेट करने वाला नहीं हूं।
विक्रमादित्य सिंह हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के बेटे और शिमला ग्रामीण से विधायक हैं। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कांग्रेस पर हिमाचल प्रदेश में लोगों से किए गए वायदे पूरे करने में विफल रहने का आरोप लगाया है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में स्पीकर द्वारा भाजपा के विधायकों के निलंबन से संबंधित सवाल के जवाब में श्री ठाकुर ने संवाददाताओं से कहा कि स्पीकर की कार्रवाई अनुचित है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कितना भी अन्याय करे उसे लाभ नहीं मिलने वाला।
हिमाचल की जनता किसी बाहर वाले को भी राज्यसभा के उम्मीदवार के रूप में जो कांग्रेस लाई उसको स्वीकार नहीं था। ये कांग्रेस के नेताओं को, विधायकों को भी स्वीकार नहीं था। साथ ही साथ एक मौका था अपना आक्रोश दिखाने का, वो उन्होंने दिखाया है। लेकिन जो स्पीकर महोदय ने किया, अगर उनके पास नंबर्स नहीं है तो उसका पहला उदाहरण उन्होंने खुद दे दिया है कि बीजेपी के विधायकों पर गाज गिरा रहे हैं, जहां एक और उनके अपने कांग्रेस के विधायक छोड़कर जा रहे हैं।
हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने आज विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर सहित 15 भाजपा विधायकों को निलंबित कर सदन स्थगित कर दिया। श्री ठाकुर ने कहा कि भाजपा को आशंका है कि विधानसभा अध्यक्ष भाजपा विधायकों को निलंबित कर सकते हैं ताकि विधानसभा में बजट पारित किया जा सके। उन्होंने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के त्यागपत्र की मांग के साथ ये कहा कि राज्यसभा चुनाव के बाद स्पष्ट हो गया है कि कांग्रेस अल्पमत में है। महाराष्ट्र कांग्रेस के पूर्व कार्यवाहक अध्यक्ष और पूर्व विधायक बसवराज पाटिल आज उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और राज्य के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले की उपस्थिति में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। श्री बसवराज पाटिल ने सोमवार को कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया था। मराठवाड़ा के लिंगायत नेता बसवराज पाटिल धाराशिव लोकसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। केंद्र सरकार देश के विभिन्न क्षेत्रों में चारा बैंक शुरू करने की योजना बना रही है। इससे पशुपालकों की समक्ष भंडारण, परिवहन और लॉजिस्टिक समस्याओं को दूर करने में मदद मिलेगी। आज नई दिल्ली में पशु चारे पर आयोजित संगोष्ठी 2024 में पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन मंत्री परसोत्तम रूपाला ने कहा कि इसका उद्देश्य दुग्ध उत्पादन और इसकी उत्पादकता में सुधार के लिए पशुधन चारे का भंडारण करना है।
बॉर्डर का एरिया बढ़ाने के लिए हम तैयार हो गए हैं और नए सीड्स, नई वैरायटीज, उसी को लेकर भी हम आगे बढ़ रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी के मन में एक नई बात भी कि हमें देश में क्षेत्र वाइज, वो नॉर्थ हो, साउथ हो, वेस्ट हो, ईस्ट हो, ऐसे क्षेत्र को लेकर बॉर्डर के बड़े बैंक बने और जहां इनके स्टोरेज की, ट्रांसपोर्टेशन की, लॉजिस्टिक की ऐसी व्यवस्थाएं भी हो, ताकि जहां एक विपुल मात्रा में कोई प्रोडक्शन हो गया तो वो अन्य क्षेत्र के लिए आरक्षित भी रखा जाए और वितरण करने में सुविधा रहे।
सरकार आम चुनावों में युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए आज से देशभर के उच्च शिक्षण संस्थानों में मेरा पहला वोट देश के लिए अभियान शुरू कर रही है। इस अभियान का उद्देश्य राष्ट्र के व्यापक हित में युवाओं को मतदान के लिए प्रोत्साहित करना और मताधिकार की उपयोगिता बताना है। ये अभियान 6 मार्च तक चलेगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने युवाओं और पहली बार मतदाता बनने वालों से भारी संख्या में मतदान करने का आह्वान किया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने बताया कि सभी उच्च शिक्षण संस्थानों से अपने अपने परिसरों में युवा शक्ति की भागीदारी बढ़ाने के लिए मतदाता जागरूकता अभियान चलाने को कहा गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। देश भर में आज राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जा रहा है। इस वर्ष के विज्ञान दिवस का विषय है विकसित भारत के लिए स्वदेशी तकनीक। इसका उद्देश्य भारत के भविष्य निर्माण में घरेलू प्रौद्योगिकियों के महत्व पर बल देना है। एक रिपोर्ट।
सीवी रमन का जन्म तमिलनाडु में 7 नवंबर 1888 में हुआ था। इनका पूरा नाम चंद्रशेखर वेंकट रमन था। भारत में हर वर्ष 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। यह दिवस वैज्ञानिक चंद्रशेखर वेंकट रमन द्वारा फोटोन की स्केटरिंग की घटना की खोज के सम्मान में मनाया जाता है। हालांकि बाद में उनके नाम पर इस सिद्धांत का नाम रमन प्रभाव रखा गया। डॉक्टर रमन ने इस थ्योरी की खोज 1928 में की थी, जिसके लिए उन्हें 1930 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इस अवसर पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग नई दिल्ली में एक समारोह भी आयोजित किया जा रहा है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र विज्ञान दिवस अवसर पर शुभकामनाएं दी हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार युवाओं के बीच अनुसंधान और नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। नागालैंड के कोहिमा साइंस कॉलेज जोत्सोमा में आज राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया। मुंबई के तनुष कोटियन और तुषार देशपांडे ने 10वें और 11वें क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए शतक बनाकर इतिहास रच दिया। उन्होंने बड़ौदा के खिलाफ वीकेसी ग्राउंड में खेले गए क्वार्टर फाइनल मैच में दूसरी पारी में 9 विकेट पर 337 रन से आगे खेलते हुए ये उपलब्धि हासिल की। कोटियन 10 चौकों और 6 छक्कों की मदद से 120 रन पर नाबाद रहे, जबकि देशपांडे ने 10 चौकों और 8 छक्कों की मदद से 123 रन बनाए। दोनों के बीच 232 रनों की साझेदारी हुई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु में 17,300 करोड़ रुपए से अधिक की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री आज शाम महाराष्ट्र के यवतमाल से पीएम किसान योजना की 16वीं किस्त जारी करेंगे। हिमाचल प्रदेश के लोक निर्माण विभाग मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने मंत्रिमंडल से त्याग पत्र देने का फैसला किया। गुजरात तट से 3,100 किलोग्राम मादक पदार्थों की सबसे बड़ी खेप जब्त की गई। आज राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जा रहा है और रणजी ट्रॉफी में मुंबई की टीम के तनुष कोटियन और तुषार देशपांडे ने शतक लगाकर इतिहास रचा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।